जिन्हें परमानेंट रेजिडेंसी किसी दूसरे तरीके से नहीं मिल पा रही, उनके लिए वीजा मैरिज अंतिम उपाय हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि लेजिटिमेट तरीके से परमानेंट रेजिडेंसी की कोशिश भी उतनी ही रिस्की हो सकती है जितना पैसे देकर शादी करना।
Don't think about fake marriage. It's a true marriage. This is true. Everything is true. Everything is real. It's just you don't sleep together. That's all.
成本差不多我要付一共15万左右澳币，对吧？
包括所有东西。
就申请完 PR， 多久 PR 能下来？
短则2-3个月，慢则1年。
You have to provide enough evidence so the immigration they believe that this is the true marriage. You go to holiday together, take a photo together.
My visa is.Can I get the money back?
But this is all about trust. Like, I don't scam people.
ये SBS रेडियो के वियतनामीज प्रोग्राम के रिपोर्टर और कंबोडियन बैकग्राउंड के एक मैरिज ब्रोकर के बीच हुई बातचीत है। और अब सुनिए SBS चाइनीज की रिपोर्टर और एक पोटेंशियल हस्बैंड के बीच हुई बातचीत, जो अंडरकवर रिकॉर्ड की गई थी।
I need to pay about 150,000, right?
Yes, that includes everything.
How soon will I be able to get permanent residence after applying?
Within 2-3 months, a year at most.
जब SBS ने सबसे पहले रिसर्च करना शुरू किया, तो हमारी टीम को ऑनलाइन फोरम्स और कम्युनिटी लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स में उन लोगों के विज्ञापन मिले जो परफेक्ट मैच ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुत से मामलों में वे प्यार की तलाश में नहीं थे बल्कि वीजा मैरिज की खोज में थे। साथ ही परमानेंट रेजिडेंसी पाने का एक और तरीका है, एक ऐसा एम्प्लॉयर जो आपको स्पॉन्सर कर दे। ये उन विदेशी छात्रों को पसंद आता है जो ऑस्ट्रेलिया में अपना वक्त और पैसा दोनों लगा चुके हैं। ऐसे बहुत से जॉब ब्रोकर्स और माइग्रेशन एजेंट्स हैं जो कहते हैं कि वे सरकार की लगातार बदलती नीतियों के तहत उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं। लीना और सिजीमोन भारत के दक्षिणी राज्य केरल में रहते हैं। 2008 में लीना ने ऑस्ट्रेलिया में हॉस्पिटैलिटी की पढ़ाई की। उसे उम्मीद थी कि ग्रेजुएशन के बाद वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर देगी, लेकिन सरकार ने नियम बदल दिए और उसका कोर्स लिस्ट से बाहर हो गया। वे भारत लौट गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट पर भरोसा किया। ये उस रिकॉर्डिंग का हिस्सा है जहां माइग्रेशन एजेंट इस जोड़े से वीजा स्पॉन्सरशिप के लिए एम्प्लॉयर को पे करने की बात कर रहा है। माइग्रेशन एक्ट के तहत स्पॉन्सरशिप के लिए पेमेंट करना गैर कानूनी है।
I tried to negotiate with them, but to be honest, Sijimon, there are people over here actually paying 50 or 100,000. That's very hard. However, this is a genuine job.
2015 में सरकार ने स्पॉन्सरशिप के लिए पे करने वाले और पेमेंट लेने वाले दोनों पर पेनल्टीज को बढ़ा दिया था, लेकिन सिजीमोन और लीना ने अपने एजेंट पर विश्वास करते हुए सोचा कि वे अपने भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो ये लगता था कि ये एजेंट रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट है।
These employers will only accept cash, so you either need to give it to somebody in Melbourne to actually come and meet up over here, or I'm trying to think of the best way. He won't allow bank to bank.
लेकिन हुआ इसके उलट। सिजीमोन और लीना का ऑस्ट्रेलिया में नया जीवन शुरू करने का मौका खत्म हो गया।
After he received the money and after he charged his professional fees and all the money. He's just ignoring us. His phone was completely disconnected. And his email is transferred to other person, his friend. So at the end, that visa completely refused.
We are feeling very bad right now.
We're feeling awful, awful.
ऐसा नहीं कि केवल कोई इंडिविजुअल माइग्रेशन एजेंट या एम्प्लॉयर मौका देखकर इन लोगों से रकम वसूलता है। दरअसल वीजा एम्प्लॉयमेंट मार्केट में विदेशी छात्रों और संभावित माइग्रेंट्स के सपनों के सौदे करती कई कंपनियां मौजूद हैं। SBS द फीड ने ब्रिस्बेन जाकर स्किल्ड वीजा रिक्रूटमेंट एजेंसी ग्लोबल स्किल्स एंड बिजनेस सर्विसेज की जांच की। इस कंपनी को स्थापित करने और चलाने वाले व्यक्ति का नाम जैक रेसोकोविक है, जो कंपनी का डायरेक्टर और सोल शेयर होल्डर भी है। ये जॉब ढूंढ रहे उन विदेशी छात्रों को निशाना बनाते हैं जो खासकर वर्क स्पॉन्सरशिप चाहते हों जो PR दिला सके। स्टूडेंट्स ने श्री रेसोविक और उनके स्टाफ से मुलाकात कर सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन के दफ्तरों में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। मिस वानी ऐसे कई स्टूडेंट्स में से है जिनसे SBS ने बात की।
In 2016, he found me a good employer and everything was good and I signed a contract with him. But that job never happened in real. Everything happened on paper. So since last year, 2016, I'm still waiting for that job to happen. Still waiting for the money I paid, which is $25,000 I paid in his business account.
Mandeep bhi Global Skills and Business Services ke clients mein se hain.
I paid him $40,000 and I got the money from whole money I got them from India, from my in-laws and my parents. They have mortgaged their property and got the money and they have transferred from India. When I was asking for my money for a few months, he was promising me like they were in a process of finalizing my refund. And after that, I got the email like the company is being liquidated. They won't give me my money back.
ग्लोबल स्किल्स और क्लाइंट्स के मध्य साइन किए गए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के अनुसार क्लाइंट्स को जॉब्स की कोई गारंटी नहीं दी जाती, लेकिन यदि उनकी नौकरी 12 महीने से कम चलती है तो वे कुछ खर्च काटकर अपनी रकम वापस मांग सकते हैं। लेकिन ग्लोबल स्किल्स एंड बिजनेस सर्विसेज अब लिक्विडेशन में है और क्लेम के अनुसार उसकी कोई एसेट्स भी नहीं है। हालांकि क्रेडिटर्स की लिस्ट में वानी और मनदीप जैसे 30 नाम शामिल हैं जिन्होंने करीब करीब इतनी ही रकम वापस लेनी है। SBS ने और भी कई लोगों से बात की जो क्रेडिटर्स लिस्ट में शामिल नहीं, जिनमें से एक व्यक्ति ने तो कॉन्ट्रैक्ट तब साइन किया जब कंपनी पहले से लिक्विडेशन में थी। कुछ की तो ये जीवन भर की जमा पूंजी थी जो उन्होंने इस कंपनी को दे दी। इस युवक ने तो नौकरी के लिए $50,000 चुकाए। उसके पिता ने भारत में एक हाई इंटरेस्ट लोन लेकर उसे रकम भेजी थी। उन दोनों को उम्मीद थी कि उसकी नई नौकरी से वे लोन चुका देंगे।
If Jack doesn't give me my money back, what I'm gonna say to my dad?
And do you think your dad is feeling pressure as well around this?
He is absolutely feeling the pressure because the money which he earned in his entire life, he gave me just in a moment.
जब ग्लोबल स्किल्स एंड बिजनेस सर्विसेज लिक्विडेशन में है, उसी समय जैक रेसोविक एक नई कंपनी ऑल बॉर्डर्स के लिए काम कर रहे हैं। नई कंपनी उसी ऑफिस स्पेस से, उन्हीं फोन नंबर से और बिल्कुल वैसी ही सर्विसेज देती है। बस उसके पास नया बिजनेस कार्ड है और कंपनी उसके पार्टनर के नाम पर है। SBS द फीड ने जैक रेसोविक को कॉल कर उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया। SBS ने उसके ऑफिस मोबाइल पर कई बार फोन किए। SBS के ईमेल भेजने के बाद उसने अपने ईमेल अकाउंट को बंद कर दिया। ये स्टोरीज कोई अनोखी नहीं है। बहुत से माइग्रेंट्स वीजा सिस्टम को नेविगेट करते हुए ऐसे अनुभवों के बारे में बताते हैं। बहुत से पीड़ित डर से सामने नहीं आना चाहते और मनदीप की तरह बहुत से लोगों को ऑस्ट्रेलिया के लीगल सिस्टम्स की समझ ही नहीं और वे अपने वीजा स्टेटस के कारण चुप रहते हैं।
We don't know the basic rules, basic law, where to go and to whom we should complain and who can guide us. As international people, we don't know that.
और दूसरे अनेक लोग पुलिस के पास नहीं जाना चाहते क्योंकि वे भी स्पॉन्सरशिप के लिए रकम देकर कानून तोड़ रहे होते हैं। शायद इसीलिए वानी कहती हैं,
एंड देन देयर इज ऑलवेज दिस फियर दैट मे बी लीगल एंटिटी गोना ब्लेम यू एट द एंड, मे बी पुलिस गोना से समथिंग बैड और मे बी इमिग्रेशन विल चेज अस। द टेरिबल थिंग इज दैट when we know we are lost money, no one wants to lose the visa as well and go back. So I think that's why people don't want to come forward. They are scared. They have nothing to, and even they can't afford to lose anything more. They have already lost everything. So yeah.
सिडनी के रेडफर्न लीगल सेंटर के सीन सिटी मॉन्सन कहते हैं कि वे कानूनों में बदलाव चाहते हैं जिससे विक्टिम्स सामने आ सकें।
We've been working on some law reform over the last 18 months, 2 years, that would look at amending the Migration Act around Section 499 that actually puts better protection in place for the international student. And that is that they're able to come forward and they're able to present their situation without fear that their visa will be cancelled.
वे कहते हैं तब तक victims को कानूनी सलाह लेनी चाहिए क्योंकि उन्हें कई दूसरे तरीकों से मदद मिल सकती है। और जो अब अपनी आपबीती सुना रहे हैं वो केवल एक बात चाहते हैं कि दोषियों को सजा हो।